धवला पुस्तक नववी लेक्चर नंबर 20। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोए सवसाहूणं, सिद्धादद्धमला विशुद्ध बुद्धिये लद्ध सवत्था तिहुवन शिरसे हरया पसियंतु भड़ारया सौवे। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इस षटखंडागम का यह चौथा खंड, इसका नाम है वेदना, और उसमें कृति अनियोग द्वार ये अपना यहाँ का विषय है। इस नौवे पुस्तक के पृष्ठ संख्या 187 पर हम आ गए, 187। यहाँ हमने बात देखी थी कि यहाँ जो सूत्र बताया था 45 नंबर का, वहाँ ये बात थी कि अग्रयणी पूर्व की ऐसे ऐसे, यानी वहाँ से शुरुआत की थी। तो उसके लिए उन्होंने पहले में पहले ज्ञान 5 प्रकार के हैं, और उसमें से शुद्ध ज्ञान है, और उसमें से अंग श्रुते आदि बातें चल रही थी। अब ज्ञान के ऊपर सारे निक्षेप, नए निक्षेप, अनुगम वगैरह सब लगा ले उन्होंने, उपक्रम वगैरह। अब श्रुत ज्ञान शब्द पर सब बता रहे हैं। श्रुत ज्ञान शब्द पर ये बातें बताई कि नाम स्थापना द्रव्य और भाव ये जो भेद से श्रुत के चार प्रकार, श्रुत ज्ञान के चार प्रकार बताए थे। पहले 3 जो निक्षेप है वो द्रव्यार्थिक नय का विषय है, ऐसा उन्होंने बताया था। अब उसके बाद निक्षेप के अर्थ यहाँ बता रहे हैं कि उसमें तो कहते कि नाम स्थापना और द्रव्य जो बात है, द्रव्य के जो भेद है 2, आगम और नो आगम, तो कहते वो समझना सरल है। विशेष क्या बताया कि जो गुरु है, अन्य जो ज्ञान के उपकरण है, उसको नो आगम द्रव्य शुद्ध ज्ञान कहते हैं, ये उन्होंने कल बात बताई थी, यानी अपनी बात कल हमने पढ़ी थी। और भाव, भाव की बात है ना, भाव निक्षेप से श्रुत ज्ञान के उपयोग से युक्त पुरुष भाव श्रुत ज्ञान है, उसी को श्रुत ज्ञान, भाव श्रुत ज्ञान कह दिया, उस पुरुष को ही। इस तरह से नए और निक्षेप बताएं, और फिर अनुपूर्वी में बताते हैं श्रुत ज्ञान पूर्वानुपूर्वी से 2 नंबर का है, पश्चातानुपूर्वी से 4 नंबर का है, यथा तथानुपूर्वी से कोई भी नंबर हो सकता है उसका। उसका नाम कौन सा है, वो नौगुण्य है, यानी सुनकर ही ज्ञान होता है, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। प्रमाण उसका कहते एक है, अथवा अक्षरों की अपेक्षा कहेंगे तो संख्यात है, और उसका अर्थ जो है प्रमेय की अपेक्षा अनंत है। वक्तव्य में देखा था वो स्वसमय और परसमय है, क्योंकि वहां दुर्निर्णय क्या होती इसकी भी चर्चा करते थे। यहाँ तक अपनी बात पढ़ी थी हमने, अब अंतिम लाइन देखेंगे 187 पृष्ठ पर, अर्थाधिकार की बात करेंगे। यानी उपक्रम इतने प्रकार का होता है ना, इसलिए वहां भी अर्थाधिकार की बात करें। अंग श्रुत और अनंग श्रुत, अन अंग श्रुत कहो या अंग बाह्य श्रुत कहो, बात एक ही है। इस प्रकार अर्थाधिकार 2 है, सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, वैनयिक, कृतिकर्म, दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्प्य व्यवहार, कल्प्याकल्प्य, महाकल्प्य, पुंडरीक, महापुंडरीक और निषिद्धिका। इस प्रकार अनंग श्रुत 14 प्रकार का है, इसको 14 प्रकीर्णक ऐसा भी कहते हैं। उनमें अभी हर एक में क्या क्या विषय बताते हैं उसकी बात यहाँ करेंगे। सामायिक अनंग श्रुत द्रव्य क्षेत्र और काल की अपेक्षा करके एवं पुरुष वर्ग का विचार करके परिमित एवं अपरिमित काल रूप, परिमित यानी वो मर्यादित काल, अपरिमित यानी कोई काल की विशिष्ट मर्यादा नहीं डालते हुए सामयिक का प्ररूपण करता है। चतुर्विंशति स्तव अधिकार वृषभादिक जिनेन्द्रों और उनकी कृत्रिम व अकृत्रिम प्रतिमाओं एवं चैत्यालयों के द्रव्य क्षेत्र काल भाव और प्रमाणादि का वर्णन करता है। वंदनाधिकार द्रव्यार्थिक नय का अवलंबन करके उनकी वंदना की विधि का प्ररूपण करता है। ये सब मुनियों के लिए खास करके बातें हैं। प्रतिक्रमण अधिकार, अभी कौन कौन से प्रतिक्रमण होते हैं उसकी बात है। दैवसिक, दैवसिक कहने से दिन के अंत में किया जाता है। रात्रिक, ऐरियापथिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक, सांवत्सरिक और उत्तमार्थ प्रतिक्रमण, क्या कहना चाहते हैं देखो। दैवसिक कहने दिन में जो कुछ दोष हुआ है उस संबंधी जो प्रतिक्रमण दिन के अंत में होता है, रात्रि में जो कुछ दोष लगा है वो सुबह सुबह उसका होता है उसको रात्रिक कहेंगे। ऐरियापथिक यानी जो विहार करके आते हैं ऐरियापथ में, यानी वो तो समिति होती उनकी, एरिया समिति, उसमें जो कुछ दोष लगा हो तो उसका प्रतिक्रमण करने में आता है। पाक्षिक यानी 15 दिन में, चातुर्मासिक यानी 4 मास के अंत में, सांवत्सरिक यानी पूरे साल भर का, और उत्तमार्थ यानी पूरे आयु के अंत में जो किया जाता है उसको उत्तमार्थ कहते हैं। इस प्रकार 7 प्रतिक्रमणों की भरतादिक क्षेत्रों, दुष्मादिक कालों और 6 सहननयुक्त पुरुषों की विवक्षा कर प्ररूपण करता है। यानी इसके बारे में जो कौन से क्षेत्र में कैसा प्रतिक्रमण हो सकता है, अन्य अन्य कालों में कैसा हो सकता है, चौथे काल, पांचवें काल आदि, और दुष्मादिक, दुष्मा कहाँ से शुरू होता है, पहला सुखमा सुखमा, फिर सुखमा सुखमा, दुखमा दुखमा, सुखमा दुखमा, दुखमा दुखमा लास्ट होता है, पहले दुखमा आता है। हाँ, पांचवे काल की अपेक्षा भरतादिक क्षेत्र है ना, दुखमादिक काल और 6 सहननयुक्त पुरुष, यानी अलग अलग उसकी विवक्षा से ये बातें होती है। आदि में अन्य भी काल ले सकते उसमें। हाँ, 189 पेज पर आते हैं। अभी तक हमने 4 देखे, सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण। अब वैनयिक अधिकार, भरत ऐरावत व विदेह के साधुओं के योग्य द्रव्य क्षेत्र काल और भाव का आश्रय कर ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तपो विनय एवं औपचारिक विनय का वर्णन करता है। कृतिकर्म अधिकार, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय गणचिंतक यानी साधु संघ के कार्यों की खबर रखने वाले और गण वृषभ यानी गणधर आदिकों की जाने वाली पूजा के विधान का वर्णन करता है। यहाँ उपयुक्त गाथा ऊपर जो 64 नंबर की बताई थी, दुओणदम जहाजादम बारसावत्तमेव वा चौसी समति शुद्धम च किदियम मम पयुंजये, यथा जात अर्थात जात रूप होकर, यथा जाते नहीं तो मुनियों की बात होती है, यथा जात स्वरूप होते हैं उनके दो। हाँ, जैसे जन्मता जन्मा हुआ बालक है ऐसी अवस्था धारण करके, दो अवनति, अवनति ने झुककर नमस्कार करना उसको अवनति कहते हैं, 12 आवर्त, 4 शिरोनति, देखो इन्हें एक एक दिशा में आवर्त है, जैसे हाथ जोड़कर ये करते हैं उसको आवर्त कहते हैं, और एक एक दिशा में तीन बार होता है तो 12 आवर्त होते हैं। 4 शिरोन्नति, हर दिशा में वो सिर झुकाकर नमस्कार भी होता है, और 3 शुद्धियों से संयुक्त, अभी बताएंगे यहाँ नीचे विशेषार्थ में बताएंगे, कृतिकर्म का प्रयोग करना चाहिए। विशेषार्थ, अर्हंतादिकों की जाने वाली पूजा के विधान का नाम कृति कर्म है। इसमें कितनी अवनति, कितनी शिरोन्नति और कितने आवर्त किए जाते हैं, इसका निर्देश इस गाथा में किया गया है। दोनों हाथ जोड़कर शिर से भूमि स्पर्श रूप नमस्कार करने का नाम अवनति है। यह अवनति एक पंच नमस्कार के आदि में और एक चतुर्विंशति स्तव के आदि में इस प्रकार दो बार की जाती है। वो एक प्रकार एक एक्स्ट्रा हो गया है, प्रकार शब्द कि दो बार आती है। मन वचन व काय के संयमन रूप शुभ योगों के वर्तने का नाम आवर्त है, यानी दोनों हाथ जोड़कर उनके अग्रिम भाग की ओर से चक्राकार घुमाना। जैसे हम अंजुली ऐसे हाथ जोड़कर इस तरह से इसको चक्राकार घुमाते हैं, उसको आवर्त कहते हैं। पंच नमस्कार मंत्र उच्चारण के आदि व अंत में तीन तीन, देखो ऊपर क्या कहा था, पंच नमस्कार के आदि में एक तो अवनति करना और फिर तीन तीन ये आवर्त करना है, तथा चतुर्विंशति स्तव के आदि व अंत में तीन तीन इस प्रकार 12 आवर्त किए जाते हैं। अथवा कहते चारों दिशाओं में घूमते समय प्रत्येक दिशा में एक एक प्रणाम किया जाता है, इस प्रकार तीन बार घूमने पर वे 12 होते हैं। दोनों हाथ जोड़कर शिर के नमाने का नाम शिरोन्नति है, यानी हाथ जोड़कर गर्दन से झुककर नमस्कार करना, यानी ऐसे गर्दन सीधी रखकर हाथ ऐसे ऊपर नहीं करना है। ऐसे वो आते हैं किस तरह से नमस्कार किया जाता है उसमें इसको दोष कहने में आता है, नमस्कार करके सिर यहाँ तक झुकाते हैं। यानी वो हमने पहले वो किसमें पढ़ा है, यानी वो हाथ भी कहाँ रखना, पेट के क्या, यानी ये कहाँ टच होने चाहिए, कहाँ नहीं होने चाहिए, उसकी सब विधि होती है नमस्कार की भी, मुनियों के लिए खास ये बताया जाता है। पेज नंबर 190। यानी दो हाथ जोड़कर सिर के नमाने का नाम शिरोन्नति, यह क्रिया पंच नमस्कार और चतुर्विंशति स्तव के आदि व अंत में एक एक बार करने से 4 बार की जाती है। यह कृति कर्म जन्मजात बालक के समान निर्विकार होकर मन वचन काय की कोने मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक किया जाना चाहिए। अब ये 6 नंबर की बात हो गई, ये 14 प्रकीर्णकों की बात अपनी हो रही है। 190 पेज पर नीचे का पैराग्राफ दश वैकालिक, ये अनंग श्रुत्या ने अंग बाह्यों की बात चल रही है। तो दश वैकालिक अनंग श्रुत द्रव्य क्षेत्र और काल और भाव का आश्रय कर आचार विषयक विधि वो गोचर होना चाहिए, गोचर विधि प्ररूपणा करता है। गोचर यानी वो तो आहार के लिए निकलते हैं, गोचरी वृत्ति लिखते हैं, यानी उनके जो आहार के लिए किस तरह से निकलते हैं, कौन से दोष डालकर निकलना है कैसे, वो तो जिसको कहेंगे आकड़ी लेकर निकलते वो सब उसमें आ जाती बात। ये दश वैकालिक में है और उसमें भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बात बताई जाती है। 8वां है उत्तराध्ययन अनंग श्रुत, उद्गम दोष उत्पादन दोष और ऐषण दोष संबंधी प्रायश्चित्त की विधि की कालादि से विशेषित प्ररूपणा करता है, ये उत्तराध्ययन। अब ये जो दोष लगते हैं भोजन संबंधी उसके बाद आती है। कल्प्य व्यवहार श्रुत साधुओं को पीछी कमंडलू कवली ये ज्ञानोपकरण विशेष है, ज्ञानोपकरण विशेष वो कवली क्या होता है पता नहीं, कल भी आई थी बात कवलियों की। हाँ यानी हाँ ज्ञान का कुछ उपकरण है, ज्ञानोपकरण विशेष और पुस्तक आदि। ऊपर भी लिखा है पिच्च कमंडलु कवली पोथ आदि, जो जिस काल में योग्य हो उसकी प्ररूपना करता है, तथा अयोग्य सेवन और योग्य सेवन न करने के प्रायश्चित्त की प्ररूपना भी करता है। ये कल्प्य व्यवहार, कल्प्याकल्प्य श्रुत जो है वो साधुओं को जो योग्य है और जो योग्य नहीं है उन दोनों की ही द्रव्य क्षेत्र और काल का आश्रय कर प्ररूपना करता है। महाकल्प्य श्रुत भरत ऐरावत और विदेह तथा यहाँ रहने वाले तिर्यंचवर मनुष्यों के, देवों के एवं अन्य द्रव्यों के भी स्वरूप का छह कालों का आश्रय कर निरूपण करता है। यानी वहां रहने वाले जीवों की बात है और उसका विशेष वर्णन, अलग अलग कालों में क्या क्या बातें होती है उसकी बात है। पुंडरीक श्रुत छह कालों से विशेषित देव असुर एवं नारकियों में तिर्यंचो मनुष्यों की उत्पत्ति की प्ररूपणा करता है। क्या कहते हैं यानी कौन से काल के जीव कहाँ कौन मरकर उत्पन्न होते वगैरह। जैसे हमने देखा ना मनुष्य तिर्यंच भोग भूमि पहले तीन काल में तो मरकर तो देव में ही चले जाएंगे, चौथे काल में मरने वाले मनुष्य तिर्यंच तो चारों गति में जा सकते इस तरह से। इस काल में तिर्यंच और मनुष्य इन कल्पों तथा इन पृथ्वियों में, पृथ्वी नहीं पृथ्वी चाहिए, क्या कहते हैं कौन से काल वाले जीव कौन से कल्प तक उत्पन्न हो गए, क्योंकि उनमें सहनन वगैरह के भी नियम होते हैं, और कौन से पृथ्वी तक जाएंगे उसकी भी चर्चा होगी। इसकी वह प्ररूपणा करता है, ये प्ररूपणा में रू दीर्घ चाहिए, यह अभिप्राय है। ये पुंडरीक हुआ, महापुंडरीक श्रुत काल का आश्रय कर देवेंद्र चक्रवर्ती बलदेव वो वासुदेवों में उत्पत्ति का वर्णन करता है। देवेंद्र तो समझते हैं देवों के इंद्र, चक्रवर्ती बलदेव और वासुदेव मालूम है, क्या कहते हैं उसको दूसरा नाम नारायण, और ये प्रति नारायण है, बलदेव है ना नारायण का भाई है ना, बलदेव ही कहते हैं उसको। निषिद्धि का काल का आश्रय कर प्रायश्चित विधि और अन्य आचरण विधि की भी प्ररूपणा करता है। ये प्रायश्चित विधि वगैरह ये तो आचार्य इनका अभ्यास करते हैं, क्योंकि उनको तो संघ में जो मुनि अपना आलोचना दोष प्रकट करते हैं तो उनके लिए विशिष्ट वो प्रायश्चित की विधि होती है। इसे मन में जो चाहे आ गया उसको बता दिया ऐसा नहीं होता है, विधि पूर्वक उसकी जो की बातें होती है ये उस संबंधी शास्त्र है। अब आते 192 पृष्ठ पर, देखो पहले हमने ज्ञान के ऊपर नाम निक्षेप वो सब लगाए थे, फिर ज्ञान का भेद है श्रुत ज्ञान, तो श्रुत ज्ञान के ऊपर हमने सब निक्षेप है वो सब चारों ही बातें उपक्रम वगैरह सब लगाया था, अनुपूर्वी अर्थाधिकार वगैरह वगैरह। अब वो श्रुत ज्ञान का भेद है अंग श्रुत, यानी हमने दो बातें देखी ना अभी, श्रुत ज्ञान के दो प्रकार है, यानी श्रुत ज्ञान के अर्थाधिकार देख रहे थे, तो श्रुत ज्ञान के अर्थाधिकार में अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, तो यहाँ अंग श्रुत ज्ञान के भेदों की बात चलेगी, अर्थाधिकार में उसको लिया है। देखो अब नाम स्थापना द्रव्य और भाव अंग श्रुत के भेद से अंग श्रुत ज्ञान चार प्रकार का है। यानी पहले उन्होंने अंग बाह्य की चर्चा कराई, अभी अंग बाह्य अंग श्रुत पर डायरेक्ट वो अपना जो तीन नंबर का पॉइंट था अंग श्रुत उस पर चर्चा कर रहे हैं। आदि के तीनों निक्षेप द्रव्यार्थिक नय के निमित्त से होने वाले हैं, ये हर जगह हम समझ सकते हैं। जो नाम तो द्रव्य किसी द्रव्य का रखा, स्थापना एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य की होती है, वहां पर भी द्रव्य ही विषय है, और द्रव्य निक्षेप तो होता ही द्रव्य संबंधी, केवल वो भाव निक्षेप जो है वो तो पर्याय वर्तमान पर्याय को विषय करने वाला है, वो निक्षेप भी वर्तमान को लेना और नए उसको जानने वाला नए भी उसको जानने वाला वो नय इस तरह से लेना है। तो कहते आदि के तीनों निक्षेप द्रव्यार्थिक नय के निमित्त से होने वाले हैं तथा भाव निक्षेप पर्यायार्थिक नय से उत्पन्न है, उनमें निक्षेप के अर्थ को कहते हैं। अपने आप में रहने वाला अंग शब्द नाम है, यानी किसी का नाम अंग रखा, वो अंग अनंग ऐसा आता है ना, वह यह है, इस प्रकार बुद्धि में आरोपित अन्य अर्थ का नाम स्थापना अंग है। यानी किसी हमने कह दिया हमारा चौथा अंग है, ये हमारा पांचवा अंग है, ये हमारा अंग शुद्ध ज्ञान है, ऐसा कहेंगे किसी भी चीज में उसकी स्थापना करना, वो गया स्थापना निक्षेप, उसको स्थापना अंग कहते। यहाँ एक फुल स्टॉप देना, स्थापना अंग है के बाद जो जीव अंग श्रुत के पारंगत उपयोग रहित वह भ्रष्ट अथवा अभ्रष्ट संस्कार से सहित है। संस्कार यानी वो जो धारणा तक पहुंचा हुआ चलता है ज्ञान, उसको संस्कार कहते हैं। वो संस्कार छूट भी सकता है, ऐसा नहीं कि एक बार धारणा में आए तो कायम वो चलता ही रहे, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। वो संस्कार उसके छूट भी सकते, जैसे हमने बचपन में कोई चीजें याद की थी कुछ काल के लिए तो याद थी, बाद में तो वो संस्कार भी नष्ट हो गए। कितनी कविताएं कितने क्या क्या श्लोक पाठ याद किए थे ना हमने, वो भी भूल गए सारे। इसलिए कहते कि ये आगम अंग श्रुत किसको कहना, ये बात हो रही यहाँ पर। हमने देखा था कि द्रव्य निक्षेप के दो भेद होते हैं, एक आगम द्रव्य निक्षेप और एक नो आगम द्रव्य निक्षेप। आगम द्रव्य निक्षेप जो पर्टिकुलर विषय है उस संबंधी प्रावृत कहो, उस संबंधी आगम को जानने वाला जो जीव है उसमें उसका उपयोग नहीं है। यहाँ पर भी यही बात कह रहे, उसमें पारंगत है नहीं, जिसने उसका अभ्यास किया हुआ है। फिर से इसको पढ़ते देखो, जो जीव पहले पैराग्राफ की लास्ट दो लाइन, अंग श्रुत के पारंगत यानी उसमें उसने अभ्यास किया हुआ है, उपयोग रहित, उपयोग रहित का अर्थ है उसमें उसका उपयोग नहीं है, अन्य किसी में उसका उपयोग चल रहा है भी, वह भ्रष्ट अथवा अभ्रष्ट संस्कार से सहित है। यानी उसने जो जाना है वो भले उसके संस्कार रूप से उसकी ज्ञान में पड़ा हुआ है अथवा यह उसका संस्कार नष्ट हो सकता है। वह आगम द्रव्य अंग है, उस जीव को आगम द्रव्य अंग कहें रहे, अंग यानी अंग श्रुत ज्ञान, तो उसको कहेंगे आगम द्रव्य अंग श्रुत ज्ञान। भव्य वर्तमान और त्यक्त ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्य अंग है। अभी हमने देखा था नो आगम में तीन भेद करते हैं, एक ज्ञायक शरीर, एक भावी यानी भव्य और एक तद व्यतिरिक्त। तो ज्ञायक शरीर के भी तीन भेद होते हैं, वर्तमान ज्ञायक शरीर, भव्य यानी भावी ज्ञायक शरीर और त्यक्त ज्ञायक शरीर, यानी वो शरीर को भी अंग कह दिया। अंग ने अंग श्रुत शंकाकार पूछते हैं इनकी अंग संज्ञा कैसे संभव है, उसका समाधान, आधार में आधेय का उपचार करने से इनकी अंग संज्ञा उचित है। यानी वो शरीर को आधार कहकर वहां रहने वाला जीव है तो जीव का उपचार उसमें कर दिया, इसलिए शरीर को भी यहाँ अंग श्रुत ज्ञान कह रहे हैं। शंकाकार कहते यदि ऐसा है तो उनके नो आगमपना घटित नहीं होता, क्योंकि अंग के आगम से कोई भेद नहीं है, ये तो फिर उसको नो आगम क्यों कह रहे हैं, और नो आगम कहकर फिर अंग कह रहे हैं, तो अंग का अर्थ ही आगम होता है। तो फिर एक बार जो नो आगम कहते हैं और फिर उसको ही अंग नाम देते हैं, ये कैसा है, ये उनका प्रश्न है, समझ में आए ना। तो कहते नहीं, क्योंकि उसका प्रयोजन स्वतः आगम भाव से अभिन्न भ्रष्ट व अभ्रष्ट संस्कार वाले तथा आगम संज्ञा से युक्त जीव द्रव्य का प्रतिषेध करना है। नो आगम कहने से वो जानने वाला नहीं है इतना कहना है, इसलिए उसको नो आगम कहा। शंका, शरीर के नो आगमत्व और अंग श्रुतत्व भले ही हो किंतु भविष्य काल में अंग श्रुत के पारगामी होने वाले जीव के नो आगमपना संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ उपचार से आगम संज्ञा युक्त जीव द्रव्य पाया जाता है, तो कहते उसको नौआगम क्यों कह रहे हैं, वो तो बाद में जानने वाला है, वो जीव है, तो उसको नौआगम मत कहो, शरीर को भले कह दिया आपने। उसका उत्तर यहाँ 193 पृष्ठ पर है, देखो समाधान, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि इस जीव की अंगशुत संज्ञा ही है, कारण कि वह भविष्य में होने वाली अंगशुत पर्याय से भविष्यमान है, यानी होने वाला है, किंतु उसकी उपचार से आगम संज्ञा नहीं है, क्योंकि वर्तमान अतीत और अनागत काल में आगम के आधारभूत धर्मों का वहाँ अभाव है, यानी अभी उसके आगम का ज्ञान नहीं है, भविष्य में वो आगम का ज्ञान करेगा, इसलिए उसको नो आगम में डाल दिया। नहीं, आगम यानी वर्तमान में उपयोग नहीं है, पन जानकार जीव है, नो आगम में नहीं जानने वाला। नहीं जानने वाला क्या है, नहीं जानने वाला शरीर भी है, नहीं जानने वाला वह जीव भी है जो भविष्य में जानने वाला है, और नहीं जानने वाले में उसके अलावा अन्य भी, जिसको हम तद व्यतिरिक्त कह रहे हैं, ये तीनों ही नहीं जानने वाले हैं, और सारों को नो आगम द्रव्य कह रहे हैं। अब कहते अंगशुत की शब्द रचना, जिसको हम ग्रंथ है ना हमारे, तो अंगशुत की शब्द रचना अथवा उसके हेतुभूत द्रव्य, अब हेतुभूत द्रव्य नहीं, वहां तो शास्त्र हो सकते हैं, अभी आज की भाषा वो सीडी डीवीडी वो सब उसमें आ जाएंगे, हेतुभूत है ना, उसका ज्ञान के हेतुभूत द्रव्य, तद व्यतिरिक्त नो आगम अंगशुत कहलाते हैं। अंगशुत का पारगामी, अभी वो भाव की बात करेंगे, अंगशुत का पारगामी और उपयोग युक्त जीवनी, उसी में उसका उपयोग है, आगम भाव अंगशुत है, यानी वर्तमान में उस रूप से परिणत है और उसी में उसका उपयोग भी है, जिसको भाव निक्षेप लगाया उन्होंने, भाव निक्षेप में भी आगम लिया, आगम अंगशुत के निमित्त भूत केवल ज्ञानी नो आगम अंगशुत कहे जाते हैं। आगम अंगशुत उस जीव को लेना जो उसको जानकार है और उसमें उपयोग वाला है, और उसके लिए जो निमित्त है कौन है, तो केवल ज्ञानी है, तो उनको नो आगम अंगशुत कहेंगे। शंकाकार पूछते हैं पर्याय नय में उपचार कैसे योग्य है, क्योंकि हमने देखा था नाम स्थापना और द्रव्य निक्षेप वो तो द्रव्यार्थिक नय के विषय है, और जो भाव निक्षेप होता है वो पर्यायार्थिक नय का विषय है, तो कहते उसमें कैसे उपचार करेंगे। समाधान, नहीं, क्योंकि नैगम नय का अवलंबन करने से कोई दोष नहीं आता। नैगम ने कहेंगे इन्हें पर्याय और द्रव्य को भी एक साथ विषय कर सकते हैं, इसलिए नैगम ने कहा। इस प्रकार निक्षेप और नय की प्ररूपना की गई है, अंगशुत ज्ञान शब्द पर उन्होंने नय निक्षेप लगा के बताया। दो अनुगमों में किसका यहाँ ग्रहण है, तो कहते प्रमाण अनुगम का ग्रहण है, प्रमेय का ग्रहण नहीं है, क्योंकि उसका यहाँ अधिकार नहीं है। प्रमाण यानी यहाँ तो ज्ञान की बात चल रही है, वो ज्ञेय संबंधी यहाँ चर्चा नहीं है, यानी अनुगम बताते ना, वो पहले नए निक्षेप बताए, अनुगम है, प्रमाण है, और फिर अनुपूर्वी है, उसकी चर्चा कर रहे अभी। पूर्वानुपूर्वी से प्रथम और पश्चादानुपूर्वी से द्वितीय है, क्योंकि वो हम अंगशुत और अंग बाह्य शुत कहते हैं इस अपेक्षा से, क्योंकि नो अंगशुत की अपेक्षा, देखो इसके कितने कितने नाम बताए हैं ना, यहाँ नो अंगशुत कहा था, उसी को अंग बाह्य शुत भी कहते हैं और उसी को अनंगशुत भी कहा है, ये तीन नाम आ गए अभी तक इसके। पूर्वानुपूर्वी से ये हो गया, क्योंकि नो अंगशुत की अपेक्षा करके अंग में द्वित्व पाया जाता है। यत्र तत्रानुपूर्वी यहाँ संभव नहीं है, क्योंकि दो ही भेद है, यानी या तो पूर्वानुपूर्वी होगी या पश्चातानुपूर्वी होगी, तीसरा भेद नहीं है। अंगशुत यह गुण नाम है, क्योंकि जो तीनों काल के समस्त द्रव्य व पर्यायों को अंगति अर्थात प्राप्त होता है या व्याप्त करता है वह अंग है, इस प्रकार अंग शब्द सिद्ध हुआ है। अंग शब्द कैसे तैयार हुआ है और ये जो अंग है वो उसको लागू होता है, इसलिए वो उसका गुण नाम है, यानी उसको उसका स्वरूप बताने वाला नाम है वो। अब द्रव्यार्थिक ने का अवलंबन करने पर प्रमाण एक ही है, क्योंकि अंग सामान्य की अपेक्षा कोई भेद नहीं है, और व्यवहार ने की अपेक्षा कथन करने पर अंग शुद्ध का प्रमाण 64 है, क्योंकि वह 64 अक्षरों से उत्पन्न हुआ है। हाँ। और बाकी सब है उसके वो कॉम्बिनेशन से, मूल अक्षर तो 64 है। शंकाकार पूछते हैं 64 अक्षर कौन से हैं? उसका समाधान, क को आदि लेकर हकार तक 33 वर्ण, ये समझते हैं? मैंने क को आदि लेकर क ख ग ग य क च ट त प य, क के बाद च आता है, यानी क ख ग ख ग च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श ष स ह, ये क से लेकर ह तक 33 यानी 33 वर्ण का अर्थ होता है अक्षर है। विसर्जनीय, विसर्जनीय ने अह कहते वो विसर्जनीय कहलाता है अह, और कह वो जिह्वा मूल्य है। इसमें ये कुछ बताया नहीं है, परंतु हमने ये जीव कांड में पढ़ा हुआ है ज्ञान मार्गना में। अनुस्वार जिसको अम आता है, अनुस्वार बिंदी देते उसको अनुस्वार कहते हैं, और उपधमानीय ये चार, उपधमानीय ने पह, इसको चार मिलकर योगवाह भी कहते हैं। योगवाह में चार बातें हैं, विसर्जनीय ने अह, जिह्वा मूल्य ने कह, अनुस्वार ने अम, और उपधमानीय ने पह, ये अलग से जो उसमें आते हैं। 27 स्वर होते हैं, स्वर ने अ आ ई ई वो सब, क्योंकि ह्रस्व दीर्घ और प्लुत के भेद से एक एक स्वर में 3 स्वर पाए जाते हैं, यानी अ आ और एक आ, यानी अ को और 2 मात्रा देना है, अ आ और आ, ये हम अभी रेगुलर हमारे व्याकरण में हम वो तीसरा प्लुत वाला यूज नहीं करते हैं, ऐसे ई ई जिसको दीर्घ कहते हैं, और ई जैसे ई लिख कर उसके आगे 3 आंकड़ा लिखते हैं, उसका अर्थ होते हैं वो प्लुत वाली ई, ऐसे ऊ ऊ और ऊ ये सब में लगाना, तो ऐसे ये सब मिलकर एक एक में 3-3 स्वर होते हैं, 27 स्वर होते हैं। हाँ, अब अक्षर संयोग की अपेक्षा करके, अक्षर संयोग कहना हर एक 64 अक्षरों को एक एक सिंगल रखो तो 64 हो जाएंगे, 64 को 2-2 की जोड़ी करते जाओ तो कितने हो गए, 3-3 का संयोग करो, 4-4 का करो, अंत में 64 संयोगी एक भी भंग होगा वहां पर, सभी भंगों की टोटल अगर करते हैं तो कहते अक्षर संयोग की अपेक्षा करके। ये कैसे हम भंग निकालेंगे, हमें मालूम है ना सप्तभंगी कैसे निकालते हैं, हमारे पास ओरिजिनल 3 है, मान लेते हैं ए बी और सी, तो ए बी सी अलग अलग रखा तो ए 3 हो गए, ए बी ए सी और बी सी रखा तो ये 3 हो गए, और ए बी सी मिलकर रखा तो ये और एक हुआ, तो 3, 3, 6 और 1, 7 होते हैं। और उसका तरीका क्या है, 3 अगर हमको लेते हैं तो उसके भंग कितने होते हैं, तो 3 बार 2 को लगकर आपस में गुणा करो और -1, ऐसे अगर 64 अक्षरों के अगर हमारे ये सब संयोग निकालना है अलग अलग, तो 2 संख्या 64 बार लिखो और आपस में गुणा करो और -1, यानी 64 जिसका अर्धच्छेद है वो संख्या होती है 61। जैसे हमने हमारे पास वो द्विरू पर्गधारा है, पहली संख्या है 4, उसका अर्धच्छेद है 2, यानी 2 बार 2 को गुणा करो तो आता है 4, 16 का अर्धच्छेद होता है 4, 256 का होता है 8, पनट्टी का होता है 16, पनट्टी के आगे बादाल का होता है 32 और उसके आगे की संख्या इकट्ठी उसके होते हैं 64, यानी इकट्ठी उसका वर्ण गुणाकार का रिजल्ट आएगा और उसमें एक माइनस करना, इतने 64 अक्षरों के संयोग होते हैं। तो उसकी अपेक्षा करके अंग शुद्ध का प्रमाण यानी टोटल कितने अक्षर होते हैं, उन्होंने वो इकट्ठे माइनस एक को ही लिख के बताया कि 184,467 कोड़ा कोड़ी, 184,467 ये कोड़ा कोड़ी, यानी इसके आगे कोड़ा कोड़ी यानी और 14 डिजिट आने वाले हैं। फिर 44,73,70 करोड़ यानी आगे और 7 डिजिट आएंगे, 95,51,615 ये इतने टोटल अक्षर आ गए, क्योंकि 64 अक्षरों के एक दो संयोगादि रूप यानी एक संयोगी, दो संयोगी, तीन संयोगी, चार संयोगी आदि 64 संयोग तक भंगों से, ये जो अलग अलग कॉम्बिनेशन परमिटेशन है, इतने मात्र संयोगाक्षरों की उत्पत्ति देखी जाती है, यानी इतने सारे उसके संयोगाक्षर हो जाते हैं। देखो पद की अपेक्षा करके, अब ये तो टोटल अक्षर हुए, अब इसमें हम पदों का यूनिट बनाएंगे जिसको मध्यम पद कहते हैं, तो इसमें पद कितने बनते हैं, तो पद की अपेक्षा करके अंग शुद्ध का प्रमाण, इसका अर्थ है जो सभी जो 12 अंग है उसके मिलकर पद कितने होते हैं उसके अंदर, तो कहते 112,83,58,005 पद मात्र है। यहाँ ये संख्या में लिखा है ना 112,83,58,005। शंकाकार पूछते इन पदों की उत्पत्ति कैसे होती है, यानी कितने अक्षरों का एक पद होता है, उसको ये पूछना है। उसका समाधान 1634,83,78,888 कहो या 83,07,888 को एक ही बात है, संयोग अक्षरों से एक मध्यम पद होता है, इतने अलग अलग संयोग अक्षरों से मध्यम पद एक होता है। और इन पदों में हम अंगों की कौन सा अंग कितना, जैसे पहलो आचार अंग बखानो पद अष्टादश सहस बखानो, यानी 18,000 वो पहला वाला सबसे छोटा, तो कहते 1634,83,07,888 इन एक मध्यम पद के संयोगाक्षरों का पूर्वोक्त सब संयोगाक्षरों में विभाग करने पर, अपनी भाषा में हमने टोटल भंग कितने निकाले थे संयोगाक्षर इकट्ठी माइनस वन, उसको ये 1634,83,07,888 भाग देंगे, तो कहते कि एक मध्यम पद के संयोगाक्षरों का पूर्वोक्त सब संयोगाक्षरों में विभाग करने पर पूर्वोक्त अंग पदों की उत्पत्ति होती है। कौन सी पूर्वोक्त, ये 112,83,58,005 ये 12 अंगों के मिलकर पद कितने हैं वो उसकी संख्या है, वो उसका रिजल्ट आता है, उसका संयोग उसमें भाग देने पर वो उसके लब्ध राशि आती है। इन अंग पदों को नमस्कार, वही गाथा में ऊपर बताए हैं, कोटि शतम द्वादश चैव कोट्यो लक्षाण्यशीतिस्त्र्यधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसंख्या एतत्श्रुतं पञ्चपदं नमामि, यानी इतने पदों को मैं नमस्कार करता हूँ। कोटि शतम द्वादश चैव कोट्यो, यानी द्वादश कोटि शतम यानी 100 करोड़ और ऊपर 12 करोड़, द्वादश चैव कोट्यो यानी 112 करोड़, लक्षाणी अशीति त्र्यधिकानी यानी कितने लाख, अशीति यानी 80 और उसमें 3 अधिक यानी 83 लाख, और फिर पंचाशदष्टौ, पंचाशत और आठ अट्ठावन, जो सहस्र संख्या यानी 58,000। पंचाशद चाहिए कि पंचादश चाहिए? नीचे है क्या कहां पर? 58 सहसा पंचाशदष्टौ, पंचादश अष्टौ च, शायद पंचादश चाहिए ऐसा लगता है। क्योंकि 50 और 58 होते हैं ना, और सहस्र संख्या, पंचाशत होने से वो तो शत में चली जाएगी। हाँ 58,000। कहाँ गया? और पांच, एतच्छुतं पंच पदम नमामि, इतने शतकों में नमस्कार करता हूं। यह एक पदवर्ण नमस्कार है। अब नीचे जो बताएंगे ना, यानी एक पद में जो अक्षर है उनको नमस्कार करते हैं। पहले उन्होंने क्या किया कि टोटल पदों को नमस्कार किया। टोटल पद कितने अभी हमने देखे? 112,83,58,005। अब एक एक पद में जो वर्ण यानी अक्षर है उनको नमस्कार करेंगे, वो 1634 करोड़, उसकी बात अभी बताएंगे। हाँ, पर एक पद में अक्षर उसको भी नमस्कार कर रहे हैं। मध्यम पद का वो प्रमाण है, ये सारे पद मध्यम, ये सारे मध्यम पदों में ही द्वादशां की रचना है। देख देखो, एक पद में इतने अक्षर है, यानी इतने अक्षरों का एक पद, और ऐसे पद कितने हैं? 112 करोड़। एक डजन में 12 आते हैं, और इसे कितने डजन लेना है हमको? मान लेते 25 डजन लिए, तो 25 × 12 करेंगे ना, तो पदों के अक्षर हो गए। फिर भी कुछ अक्षर बचते, उसमें से वो अंग बाह्य श्रुत हुआ था। हाँ बोलो। हाँ, ये 67 गाथा में शायद वो पंचाशदष्टौ लिखा है, वो पंचादशष्टौ होना चाहिए। पंचादश है ने 50 और 8 ऊपर। हाँ, क्योंकि नीचे उन्होंने गोमर्षा जीवकांड में उसी भाषा में नहीं लिखा है। ठीक है, अभी नीचे पढ़ रहे थे हम, 68 नंबर को हमको पढ़ना है श्लोक में। षोडश शतम चतुस्त्रिंशत् कोटीनां त्र्यशीतिमेव लक्षाणि शतसंख्याष्टा सप्ततिम अष्टाशीतिम च पदवर्णान्। तो अलग उसका राग है। षोडश शतम, अभी जो हमने बारंबार देखा 1634, तो 1600 यानी 1600, चतुस्त्रिंशत यानी 34, और वो कोटि, त्र्यशीतिमेव लक्षाणि 83 लाख, शत संख्या अष्टा सप्तति, सप्ततिम अष्टाशीतिम यानी 7888। उन्होंने अष्टा सप्तति किया, यानी अष्टा सप्तति ने 78,100, शत संख्या अष्टा सप्तति, और अष्टाशीतिम यानी 88, अने 7888 ऐसे उन्होंने उस भाषा में बताया। ये एक पद में वर्ण इन्हें अक्षर होते हैं। नीचे उसका अर्थ देखते हैं। 1634 करोड़ 83 लाख 7888 मात्र एक पद के वर्णों को नमस्कार करता हूँ। अब जो हमने 31-1 को इतने नंबर ऑफ अक्षर उसमें से निकाल दिए तो बचे कितने अक्षर वो बता रहे। शेष अक्षरों का प्रमाण इतना होता है। ये 8 करोड़ है, 1 लाख है, 8175 यानी 8010-8175। फिर इनमें 32 अक्षरों का भाग देने पर 14 प्रकीर्णकों के प्रमाण पदों का प्रमाण इतना। यहाँ प्रमाण पद लिखा है उसका अर्थ थे श्लोक, जो 32 अक्षरों का होता है। प्रमाण यानी उसका निश्चित प्रमाण लिखा ना, यानी यहाँ 32 अक्षरों का एक प्रमाण पद बताया है। और ऐसे ये 14 प्रकीर्णकों में ये कितने होते हैं तो कहते ये ऊपर बताए ना अक्षर इतने होते हैं तो उसको 32 से भाग देंगे। वहां 8 करोड़ और समथिंग था, यहाँ 25 लाख 3380। यह खंड पद है और आगे 15/32 आ जाएंगे, अर्थात उक्त पदों का प्रमाण 25 लाख 3380 पूर्णांक 15/32 अंश है, क्योंकि वो 15 अक्षर आ जाते, पूरा वो श्लोक नहीं होता। अर्थ पदों से गणना करने पर अंग शुद्ध का प्रमाण संख्यात होता है। अब कहते हैं अर्थपद किसे कहते हैं, क्योंकि अर्थपद की बात है। देखो तीन पद अभी तक आ गए, कौन कौन से तीन पद? एक प्रमाण पद आया, उसमें वो 1634 करोड़ 83 लाख 7888 अक्षरों का एक प्रमाण, एक वो मध्यम पद था। प्रमाण पद में 32 अक्षरों का एक प्रमाण पद आता है। अब यहाँ अर्थपद की बात है, अर्थपदों से अगर उसको गणेंगे गिनेंगे तो वो संख्यात होता है। तो कहते अर्थपद किसको कहना, तो कहते जितने अक्षरों से अर्थ की उपलब्धि होती है उनका नाम अर्थपद है। अर्थपद यानी हम जिसको शब्द कहते हैं, शब्द 2 अक्षरों का भी हो सकता है, 5 अक्षरों का भी हो सकता है। हमने कहे ना मेघ, मेघ कहने से 2 अक्षरों का एक पद हो गया, वो तो उसमें अर्थभाषित होता है हमको। पत्थर 3 अक्षरों का वो एक पद बना और उसमें हमको अर्थभाषित होता है। हम जो लौकिक में भी भाषा बोलते हैं, वाक्य रचना करते हैं, जो कोई शब्द बोलते हैं तो उसमें हीनादिक अक्षरों का समूह है, उसको अर्थपद कहते हैं। यदि जितने अक्षरों से अर्थ की उपलब्धि होती है उनका नाम अर्थपद है। यहाँ उपयोगी गाथा ऊपर पढ़ेंगे। तिविहं तु पदं भणिदं अर्थपद प्रमाण मध्यम पदं ति मध्यम पदेन भणिदाः पूवंगाणं पद विभागाः। अर्थपद, प्रमाण पद और मध्यम पद, इस प्रकार पद 3 प्रकार कहा गया है। इनमें मध्यम पद से पूर्व और अंगों के पद विभाग कहे गए हैं। पद विभाग यानी इनमें से वो अंग और पूर्व जो है वो बने हैं, उनकी रचना इसमें हो गई है, यानी उनका प्रमाण इन मध्यम पदों से बताया जाता है। संघात, अभी तक ये वर्ण ने अक्षर बताए और पद बताए, अब कह रहे संघात प्रतिपत्ति और अनुयोग द्वार से भी अंगशुद्ध संख्या है। यानी अगर उसके अपेक्षा से भेद करेंगे, देखो पहले हमने 12 अंगों के भेद किए, द्वादशांग जिसको कहेंगे, प्रमाण पद बताए उसमें अक्षर बताए, अब यहाँ कहते संघात प्रतिपत्ति और अनुयोग द्वार, तो भी वो संख्यात हो जाएंगे उसके डिविजन्स। अथवा प्रमेय मात्र अंग शुद्ध के विकल्पों के पाए जाने से वह अनंत है। प्रमेय ने वो अंग शुद्ध के द्वारा जो विषय बताया गया है वो अनंत है, उसमें वक्तव्य स्वसमय और परसमय है। अर्थाधिकार 12 प्रकार का है, क्योंकि हमारा भी विषय क्या है, किस पर लगा रहे, अंग श्रुत के, अंग श्रुत ज्ञान, तो अंग 12 प्रकार के है, तो उसके नाम यहाँ बता रहे। देखो, आचारांग, सूत्र कृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग, प्रज्ञाप्ति ने प्रज्ञप्ति अंग, ज्ञातृ धर्म कथांग, उपासकाध्ययन अंग, अंतकृत दशांग, अनुत्तरोपपाद दशांग, प्रश्न व्याकरणांग, विपाक सूत्रांग और दृष्टिवादांग। उनमें से आचारांग में 18,000 पद है। इनमें यानी उस आचारांग में चर्या विधि, मुनियों के लिए बात है यहाँ पर, 8 शुद्धियों, 5 समितियों और 3 गुप्तियों के भेदों की प्ररूपना की जाती है। यानी वो कितने विस्तार से हो गए कि मध्यम पद से गिने हुए 18,000 पद इसमें हो जाते हैं। यानी सबसे छोटा अंग है 70 नंबर। कदम चरे कदम चिट्ठे, कदम आसे कदम सए, कदम भुंजे ज भासे ज, कदम पावम न बच्छदि। यत्न पूर्वक, नहीं नहीं ऊपर 70 नंबर, किस प्रकार चलना चाहिए या आचरण करना चाहिए। कदम चरे, चरना यानी विहार करना, कदम चिट्ठे आचरण, किस प्रकार ठहरना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, किस प्रकार सोना चाहिए, कैसे भोजन करना चाहिए और किस प्रकार भाषण करना चाहिए जिससे कि पाप का बंधन न हो, ये उसमें पूछा गया था। अब उसका उत्तर दूसरी नेक्स्ट गाथा में बताएंगे कि जदम चरे जदम चिट्ठे, जदम आसे जदम से, जदम भुंजे ज भासे ज, एवं पावम न बच्छदि। ऊपर पूछा था कैसे करना तो पाप नहीं बंधेगा, तो कैसे, जदम, जदम यानी यत्न पूर्वक चलना चाहिए, यत्न पूर्वक ठहरना चाहिए, यत्न पूर्वक बैठना चाहिए, यत्न पूर्वक सोना चाहिए, यत्न पूर्वक भोजन करना चाहिए और यत्न पूर्वक भाषण करना चाहिए, इस प्रकार पाप का बंधन नहीं होता। किस प्रकार इन्हें यत्न पूर्वक करना चाहिए सब, यत्न पूर्वक यानी सावधानी से, किसी जीव की हिंसा विराधना न हो इस तरह से। अब दूसरा सूत्र कृतांग है, पहला आचारांग हो गया, अब सूत्र कृतांग। 36,000 पद प्रमाण सूत्र कृतांग में ज्ञान विनय प्रज्ञापना कल्प्याकल्प्य छेदोपस्थापना और व्यवहार धर्म क्रियाओं की दिगंतर शुद्धि से प्ररूपना की जाती है। क्या कहते हैं, ये जो व्यवहार क्रियाएं हैं मुनियों की, ये मुख्यतः इसी बात है, ज्ञान विनय प्रज्ञापना कल्प्याकल्प्य। ये कल्प्याकल्प्य नाम का एक अंग बाह्य भी था ना, इसमें क्या बताया था, अच्छा साधुओं के जो योग्य और अयोग्य उसका द्रव्य क्षेत्र कालभाव की अपेक्षा वर्णन था, और यहाँ वही बात बताते हैं, व्यवहार क्रियाओं की दिगंतर शुद्धि से प्ररूपना की जाती है। यानी वो क्या कैसे होना चाहिए वगैरह बात उसमें है। अब तीसरा स्थानांग है, पेज नंबर 198, 42,000 पद प्रमाण स्थानांग में, पहला 18,000, दूसरा 36,000, ये 42,000, एक को आदि लेकर एक अधिक क्रम से जीवादि पदार्थों के 10 स्थानों की प्ररूपना की जाती है, उसके उदाहरण की गाथा। एको चेव महप्पा सो दुवि अप्पो तिलक्षणो भणिदो चदुसंकमणा जुत्तो पंचग गुणप्पहाणो य। दोनों का एक साथ अर्थ है ना, 73 भी पढ़ेंगे, छक्कप कमजुत्तो उवजुत्तो सत्तभंगी सभावो अठासो नवठो जीवो दसठानियो बनी दो। वो ऊपर का जरा स्पष्ट है। हाँ देखो, वह जीव एक को चेव महप है ना, वह जीव महात्मा अविनश्वर चैतन्य गुण से अथवा सर्व जीव साधारण उपयोग रूप लक्षण से युक्त होने के कारण एक है। देखो अभी ये अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग, दो किस अपेक्षा से, दो भेद करेंगे, तीन करेंगे, चार करेंगे, पांच करेंगे, एक एक से बढ़ते हुए भेद बताएंगे। वह ज्ञान और दर्शन यानी ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग से देखेंगे, दो प्रकार होते हैं, या संसारी और मुक्त अथवा भव्य और अभव्य रूप, दो प्रकार यानी ये दो भेदों से दो प्रकार के हैं। अब ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना की अपेक्षा तीन प्रकार के हैं, या दर्शन ज्ञान और चारित्र की अपेक्षा अथवा द्रव्य गुण और पर्याय की अपेक्षा, तीन प्रकार कहा गया है। हम तो अपना विचार करके सोच सकते हैं ना कौन कौन सी अपेक्षा कितने भेद हो सकते हैं। अब कहते हैं नारकादि चार गतियों में परिभ्रमण करने के कारण चार संक्रमणों से युक्त है। औपशमादि पांच भावों से युक्त होने के कारण पांच भेद रूप हैं। मरण समय में पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर ऊर्ध्व व अधः नीचे इन छह दिशाओं में गमन करने रूप छह अपक्रमों से सहित होने के कारण छह प्रकार है। ये छह दिशाओं में जाता है ना मरण करके, और ये जो ऊर्ध्वगमन स्वभाव बताया जाता है वो आठों कर्मों का नाश होने पर ही प्रकट होता है, उसके पहले कभी नहीं। चूंकि सात भंगों से उसका सद्भाव सिद्ध है अतः वह सात प्रकार है। हाँ,
ऊर्ध्वगमन स्वभाव के बारे में अभी कहा आपने,
हमारा अभी केवल ज्ञान स्वभाव है उसका क्या होता है? क्या हमारा केवल ज्ञान स्वभाव इसलिए पहले हम केवल ज्ञान से जानकर फिर मति ज्ञान से जानते हैं? स्वभाव है जीव का, वो प्रकट होने का समय होता है ना, उसके स्वभाव कब प्रकट होता है? जैसे केवल ज्ञान स्वभाव है कि नहीं हर जीव का, तो केवल ज्ञान कब होगा? चार घाती कर्मों का नाश होने पर। वैसे ऊर्ध्वगमन स्वभाव का प्रकट होगा आठों ही कर्मों का नाश होने पर, उसके पहले कभी भी नहीं। ये छह दिशाओं में ही उसका गमन होता है। हाँ, जो ऊपर जाता है तो वो सहज रूप से ऊपर उसका जन्म स्थान है इसलिए जाता है, ऊर्ध्वगमन स्वभाव है इसलिए नहीं जाता, क्योंकि इस बारे में बहुत गलत प्ररूपणा चलती है ना। अभी भी यही विषय निकला था, वो स्टूडेंट आया था जयपुर का, कहते हमको ऐसा ही सिखाया गया है। अभी की बात नहीं, पहले के जमाने से यही बात चल रही है। ये ध्रुवधाम में गए थे, वहां पर भी वो पंडित राजकुमार है, अभी वो दूसरी जगह गए उदयपुर में, उन्होंने बोले हम भी ऐसे सीखे और हमने बच्चों को भी ऐसा सिखाया। वो उन्होंने बता दिया वहां पर प्रवचन में बता दिया कि हम बच्चों को भी ऐसा सिखाते थे और हम ऐसा ड्रॉइंग करके बताते थे, पहले ऊपर गया फिर आड़ा गया फिर नीचे गया, ऐसा नहीं होता। सभी कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि अकेला ऊपर जाने वाला ऊपर ही जाता है ऊर्ध्वगमन स्वभाव से। जयधौला में भी है, हर शास्त्र में, अभी कहां पर अपना लघु तत्व स्फोट में आया, कोई भी शास्त्र निकालो, ये सभी आठों कर्मों का नाश होने पर ही ऊर्ध्वगमन स्वभाव से प्रकट होता है। किसी एक में भी नहीं लिखा है कि पहले वो ऊर्ध्वगमन स्वभाव से ऊपर जाता है करके। तो ये अभी आपने पढ़ा ना, ये इसी शास्त्र में मिला ना अभी आपको, ये छह अपक्रमों से युक्त है, उसका अर्थ क्या है? वो संसार अवस्था में मरण करके छह दिशाओं में गमन करता है, कहीं पर भी ऊर्ध्वगमन स्वभाव से ऊपर जाता है पहले, बाद में नहीं आता है छह दिशा में, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। यही यही पर ही उसका प्रमाण प्रस्तुत है। पूर्व पश्चिम वो सब है ना, ऊपर नीचे सब, अध दिशा में भी होता है ना, नीचे जाने वाला ऊपर क्यों जाएगा, बिल्कुल सीधा नीचे ही चला जाता है। क्योंकि सात भंगों से उसका सद्भाव सिद्ध है, तो वह सात प्रकार का है। ज्ञानावरणादि आठ कर्मों के आश्रय से युक्त होने अथवा आठ कर्मों या सम्यक्त्वादि आठ गुणों का आश्रय होने से आठ प्रकार है। अलग अलग अपेक्षा लगा के जीव के ही भेद बता रहे हैं यहाँ पर। आपकी आवाज नहीं आ रही, बोलो।
अपक्रम शब्द है ना?
हाँ, अपक्रम मरकर उन दिशाओं में वो जाता है, वो हर हर शास्त्र में बात आती है। ये विग्रह गति में छह दिशाओं में गमन करने की बात आती है, हर शास्त्र में आती है। हाँ, ये हो गया, आठ हो गए। नौ पदार्थों रूप परिणमन करने की अपेक्षा नौ प्रकार है। नौ पदार्थ समझते ना, जी आजीव आश्रय बंध पुण्य पाप संवर निजरा बंध मोक्ष, वो सब पृथ्वी जल तेज वायु प्रत्येक व साधारण वनस्पति द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय रूप दस स्थानों में प्राप्त होने से दस प्रकार कहा गया है। यहाँ तो दस प्रकार तक तो उन्होंने बातें बताई, अभी इसी को अलग अलग अपेक्षा से भेद करेंगे, ये सब रखेंगे पंचेंद्रिय के संगी असंगी करेंगे तो ग्यारह प्रकार हो जाएंगे, और इसमें जितने भेद अलग अलग करेंगे उतने प्रकार हो जाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। ये तो हो गया स्थानांग, यानी स्थान यानी उसके भेद। अब समवायांग कहेंगे, यानी समवायांग यानी वो समानता का विचार कर किया जाता है। यहाँ पर 164,000 पद प्रमाण समवायांग में सब पदार्थों के समवाय का अर्थात द्रव्य क्षेत्र व कालादि अपेक्षा समानता का विचार किया गया है। वह समवाय द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के भेद से चार प्रकार है। यहाँ समवाय ने समूह नहीं लेना, यहाँ समवाय का अर्थ समानता लेना। उनमें धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय लोकाकाश और एक जीव, इन द्रव्यों के समान रूप से असंख्यात प्रदेश होने से एक प्रमाण से द्रव्यों का समवाय होने के कारण द्रव्य समवाय कहा जाता है। यानी किसी अपेक्षाओं द्रव्यों का ही वो समूह कर दिया, पर उसमें समानता क्या है, असंख्यात प्रदेश ही सारे हैं। जम्बूद्वीप सर्वार्थ सिद्धि यानी सर्वार्थ सिद्धि विमान, अप्रतिष्ठान नरक, एक्चुअली उसको उसका नाम क्या है, बीच वाला बिल सेंटर वाला, ऊपर का नहीं नीचे का होगा ना, सबसे नीचे का बीच वाला, उसका नाम है अवधि, अवधि स्थान भी कहते हैं उसको, जो सातवें नरक का सेंटर का बिल है वो। अवधि ऐसा कुछ नंबर नाम है उसका, अवधि स्थान वगैरह, इसका प्रतिष्ठान नरक। और नंदीश्वर द्वीपस्थ एक वापी, हमने देखा ना एक एक लाख योजन की एक एक वापी होती है, इनके समान रूप से एक लाख योजन विस्तार प्रमाण की अपेक्षा क्षेत्र समवाय होने से क्षेत्र समवाय है। यानी जो जो क्षेत्र विस्तार की अपेक्षा समान है उनको इकट्ठा कर देंगे तो क्षेत्र समवाय हो जाता है। सिद्धि क्षेत्र यानी सिद्ध क्षेत्र जिसको हम कहेंगे, मनुष्य क्षेत्र, ऋतु विमान यानी वो सौधर्म का नीचे का पहला सेंटर का इंद्र विमान, ऋतु नाम का जो है पहले पटल का, और सीमंत नरक यानी पहले नरक का सेंटर का बिल, इनके समान रूप से 45 लाख योजन विस्तार प्रमाण से क्षेत्र समवाय है। यानी ये सब समान क्षेत्र वाले बातें हैं। ढाई लाख या 45 लाख योजन, ढाई द्वीप जिसको कहेंगे हम, उतना उसका प्रमाण है। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालों के ये समान 10 सागरोपम कोणाकुड़ी है ना, वो रिपीट हो गया है। तो समान 10 सागरोपम कोणाकुड़ी प्रमाण की अपेक्षा काल समवाय होने से, काल समवाय है यानी उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी समान काल है। क्षायिक सम्यक्त्व केवल ज्ञान, केवल दर्शन और यथाख्यात चारित्र, इनका जो भाव है उसके अनुभव के तुल्य अनंत प्रमाण होने का कारण भाव समवाय भवने भाव समवाय होने से भाव समवाय है। उसके अनुभव के तुल्य अनंत प्रमाण, तुल्य ने समान, तुल्य ने तुलनात्मक बात होती ना, तुल्य ने सम प्रमाण। यानी अनंत होने का कारण उसको भाव समवाय कहेंगे। अब व्याख्या प्रज्ञप्ति नाम का जो पांचवा अंग है उसकी बात करेंगे। 2,28,000 पद प्रमाण व्याख्या प्रज्ञप्ति में क्या जीव है, क्या जीव नहीं है, जीव कहाँ उत्पन्न होता है, कहाँ से आता है इत्यादि 60,000 प्रश्नों के उत्तरों का निरूपण किया जाता है। प्रश्न नहीं, उसके उत्तर। 5,56,000 पद युक्त ज्ञातृ धर्म कथांग में, ये 6 नंबर का है ज्ञातृ धर्म कथांग, इसका दूसरा नाम मालूम है? ये नाथ धर्म कथा कुछ आता है उसका, या ज्ञातृ धर्म कथा, दो नाम आता है इसके। उसमें सूत्र पौरुषी अर्थात सिद्धांतोक्त विधि से स्वाध्याय के प्रस्थापन में भगवान तीर्थंकर की तालु व ओष्ठपुट के हलन चलन के बिना प्रवर्तमान समस्त भाषाओं स्वरूप दिव्य ध्वनि द्वारा दी गई धर्म देशना की विधि का क्या कहना चाहते हैं? इसमें क्या बात बताई थी ज्ञातृ धर्म कथांग में कि तीर्थंकर की जो वाणी निकलती है, दिव्य ध्वनि निकलती है, उस धर्म देशना की विधि का यहाँ वर्णन आता है। संशय युक्त गणधर देव के संशय को नष्ट करने की विधि का, संशय युक्त यानी उनके जो अभी ऊपर व्याख्या प्रज्ञप्ति वगैरह में संशय ने वो सॉरी उसमें तो प्रश्नों के उत्तर बताए थे, और ज्ञातृ धर्म कथा में उनके जो कुछ जिज्ञासा होती है उसका नष्ट करने की विधि का, तथा बहुत प्रकार कथा व उपकथाओं के स्वरूप का कथन किया जाता है, इसका नाम है ज्ञातृ धर्म कथा। फिर उपासकाध्ययन, जैसे पहला आचारंग मुनियों के लिए था, उपासकाध्ययन ये श्रावकों के आचारों की बात होगी इसके अंदर। 11,70,000 पद प्रमाण उपासकाध्ययनांग में 11 प्रकार श्रावक धर्म का निरूपण किया जाता है, यह उपयोगी गाथा। दंशन वद सामाय पोषह सच्चित्तरादि भक्तेय ब्रह्मारम्भ परिग्रह अनुमण मुद्दिष्ठ देश बिरधीय। ये हमने देखा था ना 11 जो उसकी प्रतिमाएं हैं, तो उसमें 11 प्रकार का देश चारित्र ही बताया जाता है। दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोषध, सचित्त विरति, रात्रि भक्त विरति, ब्रह्मचर्य, आरंभ विरति, परिग्रह विरति, अनुमति विरति और उद्दिष्ट विरति, यह 11 प्रकार का देश चारित्र है। अभी इसके बहुत विस्तार है, एक एक का हमने विस्तार से वर्णन भी देखा था उसमें, रत्नकरण शावकाचार आदि में भी देखा था। अब अंतकृत दशांक की बात है। अंतकृत किसको कहेंगे? जिन्होंने संसार का अंत कर दिया वे अंतकृत कहे जाते हैं। नमी, मतंग, सोमिल, रामपुत्र, सुदर्शन, यमलिक, वलिक, निष्कंगविल, पालंब और अष्टपुत्र, ये 10 वर्धमान तीर्थंकर के तीर्थ में अंतकृत हुए हैं। इसी प्रकार वृषभादिक 23 तीर्थंकरों के तीर्थ में भिन्न भिन्न 10 अंतकृत हुए हैं। इस प्रकार 10-10 अनगार घोर उपसर्गों को जीतकर, ये बात उसमें बताई जाती है, क्योंकि प्रत्येक तीर्थंकर के काल में तो कितने कितने लाखों केवली होते होंगे, परंतु ये 10-10 ऐसे हैं कि घोर उपसर्गों को सहन कर केवल ज्ञान प्राप्त हुए उसी अवस्था में। तो घोर उपसर्गों को जीतकर समस्त कर्मों के क्षय से अंतकृत होते हैं। चूंकि इस अंग में उन 10-10 का वर्णन किया जाता है, अतः वह अंतकृत दशांग कहलाता है। यानी 24 तीर्थंकरों के हरेक के काल में जो 10-10 हुए थे उनका वर्णन इसमें आता है। इस अंग में 23,28,000 पद है। कुछ पूछा आपने शोभा? हाँ, अंतकृत यानी अभी बताए ना, संसार का अंत किया है वो अंतकृत, और ऐसे घोर उपसर्ग के साथ 10-10 होने किया, इसलिए अंतकृत दशांक कहते हैं उसको। अब ये अनुत्तर उपपादिक दशांक हो गए। इस अंग का नाम है अनुत्तर उपपादिक दशांक। उपपाद यानी जन्म होगा, किसमें होगा? अनुत्तर विमानों में। तो ये भी ऐसे वहाँ उपशम श्रेणी में मरकर वहाँ उत्पन्न होने वाले जीवों की बात होगी वहाँ पर, यानी वो भी उपसर्ग अवस्था में उपशम श्रेणी चढ़कर वहाँ मरकर वहाँ उत्पन्न होते अनुत्तर विमानों में, उनकी बात है। देखो, उपपाद अर्थात जन्म ही जिनका प्रयोजन है वे औपपादिक कहलाते हैं। उपपाद शब्द से औपपादिक शब्द तैयार हुआ। जैसे शरीर से शारीरिक शब्द तैयार होता है ना, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि, ये 5 अनुत्तर है। सबसे ऊपर से यानी अनुदिश और अनुत्तर, सबसे ऊपर के जो 5 विमान है सेंटर में होता है सर्वार्थ सिद्धि, फिर विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, ये उसके चहुं ओर होते हैं। अनुत्तरों में उत्पन्न होने वाले अनुत्तरोपपादिक कहे जाते हैं। अब ऋषिदास, धन्य, सुनक्षत्र, कार्तिक, नंद, नंदन, शालीभद्र, अभय, वारिशेन और चिलात पुत्र, ये 10 वर्धमान तीर्थंकर के तीर्थ में अनुत्तरोपपादिक हुए हैं। इसी प्रकार ऋषभादिक 23 तीर्थंकरों के तीर्थ में भिन्न भिन्न 10 अनुत्तरोपपादिक हुए हैं। इस प्रकार 10-10 अनगार, अनगारे ने मुनि भयानक उपसर्गों को जीत कर विजयादिक अनुत्तरों में उत्पन्न हुए हैं। चूंकि इस प्रकार इसमें 10-10 अनुत्तरोपपादिक अनगारों का वर्णन किया जाता है, अतः वह अनुत्तरोपपादिक दशांग कहलाता है। ये तो उनके तीर्थ काल की बात चल रही ना, शासन काल नहीं कहा, तीर्थ में। और बाद भी 2 तीर्थंकरों के बीच में बहुत सारे जाते होंगे कहीं ना कहीं। हाँ, इसमें 92,44,000 पद है। और हम तीर्थकाल है ना, उपदेश काल है, जब तक उनके समोचरण लगता है, केवल ज्ञान से लेकर उनके मोक्ष तक को तीर्थकाल कहेंगे। क्योंकि वहां जाने वाले तो सभी ओर से जाएंगे ना, विदेह क्षेत्र से जाएंगे, सबसे जाएंगे। यहाँ हमारे यहाँ क्या हुआ था उसकी बात है यहाँ पर। वहां ने भयानक उपसर्गों को जीतकर वहां उत्पन्न हुए हैं। देखो, अब आगे प्रश्न व्याकरण नाम का जो है, पहले कौन सा व्याख्या प्रज्ञप्ति आया था, उसमें प्रश्नों के उत्तर थे केवल। अब यहां प्रश्न व्याकरण की बात है। प्रश्नों का व्याकरण अर्थात उत्तर जिसमें हो वह प्रश्न व्याकरण है। 93,16,000 पदयुक्त उसके उसमें प्रश्न के आश्रय से नष्ट, मुष्टि, चिंता, क्या कहना चाहते हैं, कोई हमारा नष्ट हो गया है द्रव्य या कोई फट गया है, उसके आधार से वो जो कुछ उसका निर्णय बताया जाता है, प्ररूपणा की जाती है। मुष्टि यानी कोई मुठ में बंद, मुट्ठी में कुछ है वगैरह। चिंता, किसका विचार कर रहे हैं, लाभ अलाभ, सुख दुख, जीवित मरण, जय पराजय, नाम, द्रव्य, आयु व संख्या की तथा लौकिक एवं वैदिक अर्थों के निर्णय की प्ररूपणा की जाती है। इसके अतिरिक्त आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदनी और निर्वेदनी, इन चार कथाओं की भी प्ररूपणा की जाती है। ये जीवकांड में आई थी ना, हाँ, आक्षेपणी निनी में एक एक मात्रा अधिक हो गई। देखो उसमें भी आता है ना, अपने मत का कथन करना वो आक्षेपणी आती है, विक्षेपणी यानी पर मत का खंडन करना उस तरह से, और संवेदनी निर्वेदनी उसमें भी जो संवेद निर्वेद जो आता है ना, संसार भोगों के प्रति जो कुछ बातें होती है या जो उसका एग्जैक्ट अर्थ देखना है तो निकालना पड़ेगा। जीवकांड, जीवकांड में आई थी ना, ये चार प्रकार से कथन उसका। उसमें लिखा है क्या आपने अक्षेपणी विक्षेपणी का अर्थ? जरा पीछे का जीवकांड देना, ब्रह्मा इस बाजू, ये बाजू लेफ्ट साइड दावे तले नीचे, हाँ अभी उसमें सफेद कलर का एकदम जाड़ा नहीं, वो अभी सारे बीच वाला, हाँ सफेद कवर वाला है। मार्गना नहीं हुआ, हाँ उसी में है, बराबर है, वही वही अभी अपने हाथ लगाए थे ना, यू वाला, हाँ बहुत सारा निकालना पड़ रहा है ना। अरे ये छोटा निकला, शोभा बोलो। आपकी आवाज कुछ नहीं आती है। एरियापति क्या ने जो मुनि जो विहार करते हैं, एरिया समिति से चलते हैं, उसमें कोई दोष लगा हो तो उसका प्रतिक्रमण करते हैं वहां पर। 503 ये नया 503 है, पुराना है 503 में, अच्छा अच्छा हाँ अंगों की बात है ना, भाग एक है। यहाँ अन्य ना अन्य इसके ये प्रश्न व्याकरण अंग पेज नंबर 491 है, आपके पास है वो ढूंढारी भाषा का नंबर होगा। पहला भाग देखो, ये जीवकांड पेज नंबर 491 हिंदी वहां से मैं पढ़ रही हूँ। यह लिखा ना अथवा शिष्य के प्रश्न के अनुसार आक्षेपिणी निक्षेपिणी संवेदिनी निर्वेदिनी, यहाँ जिनी लिखा वहां दिनी लिखा, संवेदनी लिखा है, तो वो उसका अर्थ क्या है वो देखते हैं। आक्षेपिणी किसको कहना, तो तीर्थंकर आदि के जो चरित्र रूप प्रथमान योग, लोक के वर्णन रूप कर्णान योग, श्रावक मुनि धर्म के कथन रूप चरणान योग, पंचाशी काय आदि के कथन रूप द्रव्यान योग, इनका कथन करते हैं और परमत की शंका दूर करते हैं, वह आक्षेपिणी कथा है। यानी स्वमत का चार अनुयोग रूप स्वमत से उसका कथन करना, वह आक्षेपिणी हो गया। स्वमत का निरूपण कथन आक्षेपणी में, विक्षेपणी उसको कहते हैं। आक्षेपणी की बताई मैंने, अभी विक्षेपणी की बता रही हूँ। विक्षेपणी का अर्थ होता है प्रमाण नए युक्ति से यानी न्याय के बल से सर्वथा एकांतवादी परमतों का खंडन करना, वो है विक्षेपणी। अपने परमत यानी प्रमाण नए वगैरह के द्वारा परमत यानी शॉर्ट में परमत का खंडन करना, यानी प्रमाण नए रूप युक्ति और न्याय। युक्ति प्रमाण नए से जानने को युक्ति कहते हैं, और उससे जो कुछ न्याय है होते हैं उसके द्वारा परमत का खंडन करना, एकांतवादियों का खंडन। यानी एकांतवाद आदि परमत, आदि में एकांतवाद हो गए जो अन्य अन्य उनके होते वो सब, केवल परमत का खंडन कहेंगे तो भी चलेगा, कि शॉर्ट में समझना है ना हमको। अब संवेदिनी या संवेदिनी संवेदनी कहाँ था यहाँ पर, उसको कहते हैं रत्नत्रय रूप धर्म और तीर्थंकर आदि पद की ईश्वरता, ज्ञान सुख वीर्यादि रूप धर्म का फल और उसके अनुराग को कारण, वह संवेदनी कथा है। जैसे हम कहते हैं ना वो तो संवेद और निर्वेद ऐसे हम बात करते हैं, उसमें जो आस्तिक्य वगैरह, हाँ धर्म के प्रति अनुराग, उस संबंधी जो कथन है उसको यहाँ संवेदनी कहते हैं। यानी धर्म और धर्म के प्रति, धर्म और धर्म का फल उसके प्रति अनुराग के कारण ऐसा जो कथन है, धर्म और धर्म का फल उसके अनुराग को कारण ऐसा जो कथन, और निर्वेदिनी जो है निर्वेजिनी भी कहते उसको, उसका संसार देह भोग के राग से जीव नारकादि में दरिद्र अपमान पीड़ा दुख भोगता है, यानी विराग होने के कारण रूप जो कथा, यानी ऐसा कहते संसार देह भोग भोगों से विराग होने के कारण रूप कथा, उसको निर्वेजिनी कहेंगे। कथा का अर्थ होता है कथन, इसलिए चार प्रकार से इसका प्ररूपण हो जाता है, इसी को प्ररूपण कहा, उसी को कथा कहा। अब यहां रुकेंगे अभी हम, उसमें हमने 503 नंबर डाला था, वो ढूंढारी का था, और ये 491 हिंदी है, क्योंकि पहली बार हमने ये तो अभी हिंदी बनी नहीं थी तब, जीवकांड 2005 में ये हुआ था और 6 के बाद वो लिखी थी जीवकांड। ये पेज नंबर अभी हमारे पास हिंदी है ना 491 है, अभी यहीं पर रुकते अब हम। जानी के ज्ञान ते सूझे लो खालो सो वाणी म सदा आदित्य हूँ मैं।